ओम शांति। 3 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का बनकर, बाप का बनकर बाप का नाम बाला करो। सबको बताओ कि मेरा बाप तुम्हारा बाप एक है, हम सारे एक ही बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। बताओ उनको, बाला करो, मेरा नाम प्रसिद्ध करो, सबको बताओ। नाम बाला होगा तब जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे। ऐसे नहीं होगा, मतलब आप संपूर्ण पवित्र बनेंगे तब मेरा नाम बाला होगा, आप सबको सुख देने वाले बनेंगे। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है, तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। मीठा बनना माना व्यवहार कुशल होना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तब तो आप मीठे हैं, सब आपको पसंद करें। और सब पसंद कब करेंगे, जब तुम पवित्र बनेंगे। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो हद में रहेंगे, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बिरादरी, मेरा सेंटर, तब तक आप सबको अच्छे नहीं लग सकते। अपने सेंटर के भाई बहनों को अच्छे लगेंगे, अपने परिवार को अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप उनके साथ व्यवहार अच्छा कर रहे हो। परंतु आप सबको अच्छे लगो नहीं, सबको पसंद है नहीं, ये तब हो सकता है जब आत्म अभिमानी बना। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है? संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी, जो सतयुग में नहीं होगी? संगम युग पर तुम बच्चों को एक फिक्र है और जब सतयुग में पहुंच जाएंगे तब नहीं होगी। कौन सी फिक्र नहीं होगी वहां पर? यहां है, सतयुग में नहीं होगी। फिक्र, चिंता, सोच सतयुग में नहीं होगी, अब है। संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। अब तुम्हें फिक्र क्या है? एक ही फिक्र, एक ही काम है कि मुझे पवित्र बनना है, जल्दी से जल्दी मैं पवित्र बनूं। पर तो सतयुग में ये नहीं होगी। सतयुग हाँ, वहां पवित्र बनने की फिक्र नहीं होगी, यहां पवित्र बनने की फिक्र है। परंतु जब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे वहां जाएंगे ही पवित्र।
नहीं, वहां चले भी जाएंगे तो उनको पता है कि हम स्वर्ग में पवित्र है, ये महसूस हो जाओ वहां चले के
जाने। संस्कार जो है पवित्र होंगे तभी तो वहां जाएंगे।
नहीं, हम चलेंगे पवित्र अपना संस्कार सही बना के।
हाँ,
लेकिन वहां याद
रहेगा क्या? नहीं,
नहीं रहेगा।
नहीं, वहां ये याद नहीं रहेगा, वहां जाएंगे सिर्फ वही, उनको रहेगा बस हम आए हैं अपना पार्ट बजाने के लिए, बस उन्हें ये पता नहीं पवित्र क्या और अपवित्र क्या, झूठ क्या और सच क्या, ये उनको पता ही नहीं। वो तो जब झूठ बढ़ जाता है तो पता लगता है, अच्छा ये तो गलत है, ये तो रात है, ये दिन है, जब दोनों सामने आते हैं। वहां तो है ही सारे सुखी, सब एक दूसरे को सुख देना जानते हैं, उनको दुख का पता ही नहीं। किसी को दुख देना भी होता है, दूध में पानी मिलाना भी होता है, पता ही नहीं है, मिलाएंगे तो तब पता हो। नाम ही सतयुग है,
नाम ही सचखंड है।
बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया, रोटी कपड़ा मकान दुनिया बन के जमेले इधर उधर, बस एक ही फिक्र है आपको, पावन बनना है बस, और कोई फिक्र ही नहीं तुमको। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे, दुख से नहीं छूटे, क्योंकि हमने संस्कार बना लिया कि कुछ भी हो हमने दुखी नहीं होना, कुछ भी हो हमने दुखी नहीं होना, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तभी हम अंत समय यही समझ सकेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हम दुखी नहीं होंगे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे, ये पुराना वस्त्र उतारेंगे और नया लेंगे। हर एक बच्चे को अपनी दिल से पूछना है कि हम कितने खुश रहते हैं, हमको कितनी खुशी रहती है, कोई दुख तो नहीं आता, दुख कब आएगा, नहीं दुख कब आएगा, जब कोई गलती करेंगे, गलती नहीं करेंगे बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, दुख क्यों आएगा, दुख आना ही तब है जब हमने कभी ना कभी बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की है, बाबा की श्रीमत को माना नहीं, तब हमारे जीवन में दुख आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। चाहे पहले कभी हमने ना मानी हो, हमने किसी को दुख दे दिया है, अब वो तो दुख देने आएगा ना, चाहे पहले या अब, कभी भी हमने बाबा की आज्ञा की अवज्ञा की है तो उसका रिजल्ट तो दुख के रूप में आएगा ही आएगा, उससे कोई बचा नहीं सकता, बाप भी नहीं बचा सकता, उसको कितने पैसे दो रिश्वत नहीं लेता, कितने उसकी भक्ति पूजा करने बैठ जाओ, उसके कमरे में जाके उसके पांव पकड़कर बैठ जाओ, उस पर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, पक्का एकदम पत्थर है। हमें पता नहीं था, हम भी पत्थर की मूर्ति के पांव पकड़कर बैठ जाते थे, बस उसको बचा ले और घंटों बैठे रहते थे, नहीं बचाता था फिर गुस्सा आ जाता था, मेरे इस बच्चे को तूने नहीं बचाया, मेरे पति को नहीं बचाया, आज से तेरी भक्ति बंद, मैं तेरी पूजा
नहीं,
बस क्या करते, मत कर भाई,
हाँ
पांव पकड़ के बैठे रहे और क्या करते बताओ, सुनी नहीं तूने जरा सी भी मेरी बात, तो गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसने तो सुननी नहीं, उसने तो सुननी ही नहीं है। अभी भी यहां पर भी बहुत सारे कहते हैं, बाबा हमने तेरे लिए प्याज छोड़े लहसुन छोड़े पवित्रता को धारण किया, हमने जो है ना ये सारे काम, और बाबा आपके कमरे में बैठकर चार चार घंटे तीन घंटे योग किया, फिर भी तूने मेरे पति को मार दिया, मेरे छोटे से बच्चे को तूने ले लिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने, हम ऐसे ज्ञान में नहीं चलना चाहते, वो भक्ति अच्छी है, कम से कम भगवान कहीं सुन तो लेता था, तू तो सुनता भी नहीं है, ज्ञान को छोड़कर वो फिर भक्ति में चले जाते हैं, वहां उम्मीद तो है कि प्रार्थना करो, यहाँ तेरे से प्रार्थना करो, तू तो एकदम सुनता भी नहीं है, कहता मैं सुनूंगा भी नहीं करूंगा भी नहीं, मेरे पैर ही नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, किया किया तुमने भुगतो तुम, मतलब ऐसी बातें तुम करते हो बाबा, मतलब एकदम ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, आदि मध्य अंत संसार कैसे चलता है, और समझाते हैं सर्व गुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो, याद करते करते मेरी श्रीमत पर चलते चलते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी जो अब 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। ये है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना, ये नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे, बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, ए रूहानी बच्चे तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, ए रूहानी बच्चे तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप से वर्षा जरूर लेना है, मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं, जितना बड़े होते जाते हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते, जितने बड़े होते जाते हैं, छोटे बच्चे दुनिया वाले माँ बाप के बच्चे बड़े होते जाएंगे तो जो उनके माँ बाप की जायदाद होती है उसके मालिक बनते जाते हैं, फिर बाप को जला के सारी जायदाद के मालिक बन के बैठ जाते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ मेरा है, बस जब तक ये बैठा है ठीक है, इसको खाना पीना देते रहो, इसकी सेवा करते रहो, उसके बाद तो मेरा ही है, हकदार हो जाते हैं। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे और ये मरता नहीं, बिना मरे सारा कुछ दे देता है, कहते ले लो जितना चाहिए उतना ले लो, सब ले लो, लेने की हिम्मत अपने में हिम्मत करो, हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बाप से बेहद का वर्षा लेना है, अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं। अब मैं आ गया हूं, भक्ति करते थे कि भगवान मिल जाए, अब मैं मिल गया, अब तुम्हें भक्ति करने की दरकार नहीं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, ये बात तो बच्चे समझ गए हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी है, सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, सब बेहद की बुद्धि धारण करनी है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी ये पुरानी दुनिया चेंज होनी है, पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी, जो अब तमो प्रधान है, जो अब तमो प्रधान है वे सतो प्रधान होंगे, जो अब तमो प्रधान है वो क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे, अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है, इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है, तुम्हारी आत्मा क्या होती जाती है, सतो प्रधान होती जाती है, फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ने का ही ज्ञान, पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है, भक्ति क्या है, अलग है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं, तुम ब्राह्मणों को बाप क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं, और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं, वे ये नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है, जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं, टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं, नंबर वन बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करना, बाप का नाम बाला करना, क्योंकि बाप के बने हैं, बाप का नाम बाला नहीं करेंगे, मतलब बाला करना मतलब सबको समझाना, सबको बताना कि वो आ गया, अपने बाप के बारे में सबको बताना है, नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा बाप और हमारा बाप एक है। और वो एक बाप जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो आ गया है। एक एक को बताएंगे तो सबको पता लगेगा, और हम सिर्फ अपने आप में बाप के बच्चे बनकर बैठे रहे और हम किसी को नहीं बताएंगे तो कैसे पता लगेगा। हर एक ने अपने परिवार को तो बताना है ना, तभी तो आपके परिवार में आएंगे, तभी तो उनको पता लगेगा कि अच्छा तेरा बाप मेरा बाप एक है, ठीक है। तब तो आपके किसी जन्म में परिवार में आएंगे। अब जिनको आप बताएंगे नहीं वो आपके परिवार में कैसे आएंगे, जिनसे आपने राम राम श्याम श्याम नहीं किया वो आपके परिवार में किसी भी जन्म में क्यों आएंगे। कितना बड़ा परिवार चाहिए आपको तो उन सबको परिचय तो दो ना, ठीक है कि नहीं। अपने परिवार को ही नहीं बताएंगे तो अपने परिवार वाले भी आपके परिवार में नहीं आएंगे। सबको बताना है, तो चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अजनबी हो, सारी आत्माओं को ये बात तो बहुत अच्छी तरह से बतानी है कि तेरा बाप मेरा बाप एक, तभी तो उसका रिश्ता जुड़ेगा। अच्छा ठीक है फिर। संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है, ये है ही ईश्वरीय विद्या। ये तो भगवान का ज्ञान है भाई, भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है, बस उसका कहना ही तो मानना है और तो कुछ करना नहीं। वो कुछ कहता नहीं, ना घी जलाने दिया जलाने के लिए कहता, ना आरती करने के लिए कहता, ना पूजा करने के लिए, सामान बर्बाद करने के लिए कहता। सिर्फ क्या कहता है, मेरी सुनो और मेरी बात मानो, क्या जरूरत है। ना भोग लगाने की जरूरत है, ना अगरबत्ती जलाने की जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा कहना मानो। ये फिर ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उन भगत बच्चों को धीरे धीरे बदला जाए, उनकी भक्ति उनसे छुड़ाई जाए, उनको कहा जाए इधर आओ या भोग लगाओ।
अयोध्या के अंदर श्री राम का जो हो रही है ना, इंडिया के तो छोड़, हर बच्चा छोटे से बड़े तक सबके राम ही राम हो रहा है। विश्व में पूरे विश्व में उसका नाम फैला है। अब बताइए
क्या
तो एक इंसान इनके रूप में था ना
भगवान भाई, फैलेगा तभी तो आएंगे, तभी तो आएंगे ना।
कल भी जो है बहुत बड़ा सम्मेलन था, रेलवे स्टेशन से लेके और पूरे सदर बाजार तक आई थी, नई साल की वो बाबा की याद जलाने के
गुड़गांव में। ऐसा है मेरे भाई, सारी दुनिया में राजनीति चल रही है, सब बस उसी के चक्कर में आपने यही एडवर्टाइजमेंट करने के मोदी मोदी मोदी, उसमें मोदी के नारे ज्यादा और राम का नाम तो है ही है। हाँ कहते हैं, मतलब कहने का भाई ये पार्टी का स्टंट है समझे, और इसको पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और चलेगा,
ये साल और चलेगा।
साल क्या बस सब खत्म, 22 तारीख के बाद ये है कि दुनिया यूपी भाई जी, भाई जी ये अरे भाई जी ये बात सारी दुनिया जानती है, उन बातों को रिपीट करने से क्या, जो भी कर रही है। मतलब कहने का ये है राजनीति का वही है ना कि वाल्मीकि के नाम से सेंटर बना दिया ताकि छोटी जाति वाले भी खुश थे, नहीं सबको खुश कर दिया, ठीक है। मतलब जो उनका पार्ट है वो अपना कर रहे हैं, वो उनका रोल है। हमारे को तो ये समझना है कि हमने सबको बताना है कि तुम्हारा बाप मेरा बाप एक है।
भाई वो बाप को क्या आवश्यकता पड़ी है जो कहे कि तुम मेरी प्रचार करो, तुम मेरे नाम लो, मेरे बारे में बताओ, भगवान आ गया हमें पढ़ा रहा है, आप पढ़ो तेरा बाप मेरा बाप एक। उसको इतनी शक्ति नहीं है कि वो हर आदमी के दिल में बस जाए, खुद नहीं प्रेरणा कर सकता कि हाँ भाई।
ऐसा है, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी जो है ना कमी है परमात्मा में, इस कमी को भी याद रखना है। ये परमात्मा अपना अंत भी बता देता है कि मैं बच्चे ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं। हर आत्मा ने एक्यूरेट टाइम पर बनना है, परंतु तुम्हारा भाग्य तभी बनेगा जब तुम उनको सुख देने के निमित्त बनेंगे। करने को परमात्मा
आप मुझे दुख दोगे,
हाँ
सीधा कह रहा है
बिल्कुल,
मैं आपको सुख दे रहा हूँ आप मुझे सुख दोगे,
और से बड़ा
उसकी क्या जरूरत पड़ी।
कहता मैं मेरी जरूरत समझो ही मत ना, मैं तो सिर्फ जब तुम सारे गुण और शक्तियों को खो बैठते हो तो मैं तुम्हें गुण व शक्तियां देने के लिए आता हूँ। मेरा काम तो है आपको गुण और शक्तियां देना, अब कौन कितना ले वो उसका पार्ट है। उसको याद है इस बात का कि कौन कितना ले वो उसका पार्ट है। अब जो कर्म श्रेष्ठ कर्म भी तो करना सिखाएगा ना, तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। यदि परमात्मा आए और हमें श्रेष्ठ कर्म करना ना सिखाए तो हम फिर श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? कर्म करने से बनेंगे ना, और श्रेष्ठ कर्म यही है कि सबके साथ रूहानी प्रेम बनाना, सबके साथ रूहानी प्रेम बनाना। और जब तक हम रूहानी प्रेम बनाएंगे नहीं तब तक बनेगा कैसे? बनाना तो पहले हमको है ना, परिचय मिला है तो हमको मिला है ना, उनको तो परिचय मिला नहीं। हमें परिचय मिला है तो यह हमारी जिम्मे
मिले या ना मिले, लेकिन ये सबको पता है कि भगवान है,
परंतु ये तो नहीं जानते ना भगवान कौन है। वो पत्थर के राम को भगवान समझ कर बैठे हैं, अब वो जिस राम को हाँ तो वही गलत है ना। परमात्मा आकर यही तो कह रहे हैं कि मेरा ये शिवलिंग मेरा यादगार नहीं है, बनाया मेरे लिए है, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुमने शिवलिंग बना के रख दिया इतना बड़ा।
तो कहने के बावजूद भी वो मेरे ख्याल से 95% लोग हैं जो उसी के आधार पर चल रहे हैं।
फिर चलने तो हम उस, अब भाई हमारा उससे कोई मतलब नहीं है ना,
मतलब नहीं,
हमारा मतलब तो है कि को सारे के सारे सोचो 8 अरब 9 अरब जनसंख्या में से कितने सतयुग में आएंगे?
9 लाख।
तो सारे सुन ले में, सारे के सारे तो फिर सतयुग में आ जावे, वो सतयुग का भी बेड़ा गर्क करके रख दे, है ना। तो इसलिए जितना जितना जो पवित्र बनेगा, जितना जितना सुनेगा समझेगा उसी हिसाब से तो आएगा ना, सारे थोड़ा आ जाएंगे ना। तो सारे सबको तो फिर परमात्मा फिर सबको समझा देता, परंतु तो लास्ट तक सबको समझ में आ जाएगा कि ये राम राम नहीं है, ये मंदिर परमात्मा का नहीं है, ये तो ढकोसला है, क्या नहीं? ये बात सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी तो अति पर तो जाना है ना, भक्ति भी तो अति पर जा रही है ना। इंसान को खाने को रोटियां ना हो, और मंदिर पर देखो कितनी दुनिया कितना पैसा दे रही है। अब वहां सोने के दरवाजे लगा दो, सोने के वही बता रहा हूं, मतलब कुछ भी कर दो, हमें वापस आकर बाबा की मुरली पर समझना है कि ये सब अति का है, भक्ति का भी अति हो रहा है। ये बात है, अति के बाद अंत होता है ना। कोई सुधरे या ना सुधरे, हमें सुधरना है, और हम जो सुधरे हैं वो हमने अपने संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को बताना है, मानना या ना मानना ये उस आत्मा का काम है। ये टेंशन आप नहीं लो, बाबा कहते ये टेंशन आप नहीं लो कि वो सुधरे या ना सुधरे, नहीं सुधरता सुधरेगा अपने को, नहीं सुधरेगा अपने आप को, तुम सुधर जाओ बस। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं, फिर यहाँ आती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं, नंबर वार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पार्ट को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में ही रसम है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है, इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है, तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो, अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं, बुद्धि में है, हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे, बाबा ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, ये भी जानते हो कि इस दुनिया का तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हैं वे देखने का है नहीं, ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते, हैं। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो, बाप आए हैं, अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जैसे वे इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, एक साल के बाद एग्जाम होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पार्ट को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं। सत्युग में तो हम बहुत थोड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालियां बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोक हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे। अब वो धर्म ही तमो प्रधान हो गया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है और बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना है, एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है, ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तब ही आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले, हम देवी देवता बनेंगे और देवी देवता बनने की ये पढ़ाई है। और ये है ईश्वरीय पाठशाला, भगवान का स्कूल, और वो हमारा क्या है, बाप। ये हमारे गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। इतना नशा होना चाहिए,
पूरी बोतल।
ये हमारे गॉड फादर का विश्वविद्यालय है। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नरक है। फिर चक्र को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना, बाप को याद करना है और देवी गुण धारण करने हैं। लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं। तुमको भी वही बनना है। तुम ही ऐसे सर्व गुण संपन्न थे, फिर बनना है। श्री मत पर अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। ये तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो बुला देती। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई है। बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है, आप पे ही ना छूटे। हम खुशी से इस शरीर को छोड़े, हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं ना। यहाँ तुम जानते हो हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है, एक ही फुरना है। क्या है? पावन बनने का, पावन बनने का। और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं, और सब फिक्रातों से हम क्या हो जाते हैं? फारिग हो जाते हैं। ये सब खलास हो जाना है, ये सब क्या होना है? खलास हो जाना है। भक्ति मार्ग में फिक्र में, भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहेगी, आधा कल्प फिर कोई फिक्रात नहीं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने का, थोड़ा फिक्र है, फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। ये सुख दुख का खेल है, ये सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख और कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है, तुम पूछ सकते हो सतयुग सुख धाम के रहवासी हो या कलयुग दुख धाम के। ये तुम नई नई बातें सुनाते हो, जरूर कहेंगे अब दुख धाम के वासी हैं। अब हम क्या हैं? दुख धाम के वासी हैं। बहुत प्यार से पूछा जाता है। जो मनुष्य आपे ही समझें कि हम कहां के वासी हैं, हम कहां के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है, इनके प्रश्न पूछने का तरीका तो बहुत अच्छा है। भल कितनी कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नर्कवासी ना। एक सिंपल सा ही तो क्वेश्चन पूछना है कि आप कहां रहते हो, स्वर्ग में रहते हो कि नर्क में। फिर आप उनको क्या कहोगे? तुम कहां रहते हो? नींद में सोए पड़े हो? हाँ नहीं, क्या कहां रहते हो? हाँ भाई, जब कोई मरता है तो कहते हो स्वर्ग में गया। अब वो स्वर्ग में गया तो तुम कहां बैठे हो? नर्क में बैठे हैं, ठीक है ना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर इस लायक बनेंगे तब ये दुनिया स्वर्ग होगी ना, अभी तो ये दुनिया सारी क्या है, नर्क है। ठीक है कि नहीं? अब जो कितना भी सुधर रहे हैं परंतु जन्म तो उनका यही है ना, नर्क में है ना। जब तक हिसाब किताब बराबर ना हो, जब तक पवित्र पूरे ना बने, जब तक स्वर्ग के लायक ना बने, तब तक स्वर्ग बने, फिर स्वर्ग में होंगे ना, फिर उनको पता नहीं होगा, वो फिर ये नहीं कहेंगे स्वर्ग पधारा। सतयुग में कोई शरीर छोड़ेगा तो उनको ये नहीं कहेंगे स्वर्ग पधारा, उनको ये मालूम होगा कि उस आत्मा का हमारे साथ इतना पाठ था, बजाया, अब जाके दूसरी जगह जन्म ले लिया, खत्म बात। उनको ज्ञान नहीं होगा परंतु ये संस्कार होगा, बाकी ये मालूम नहीं होगा कि कर्मों का हिसाब किताब है, उनको कर्मों के हिसाब किताब के बारे में पता नहीं होगा। परंतु वो इस युक्ति से चलेंगे कि हमने सबको सुख देना, बस
दुखी होता ही नहीं,
स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाएगा ना। अब तो पुरानी दुनिया है, ये तो नर्क है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सीढ़ी में भी क्लियर है, तुम सुख धाम में हो वा दुख धाम में। सीधा क्वेश्चन पूछना है कि तुम स्वर्ग में हो या नर्क में, युक्ति से। फिर उनको पूछना है कि कोई मरता है तो कहां जाता है, अपने आप ही समझ जाएंगे कि हम नर्क में हैं भाई, वाक्य में हमें पता ही नहीं था। ये है हेल या हेवन, डीटी हो या देवी देवता हो या शैतान हो, डीटी हो या डेविल हो, तुम देवता हो या शैतान हो। देवता होते हैं सबको सुख देने वाले, सोच के बताओ क्या आप सबको सुख देते हो,
नहीं।
तो शैतान हो, मतलब ये बात उनको पूछेंगे और उनसे कहलवाएंगे, तब तो उनको ये पूछना है। ऐसे पूछेंगे तो उनको समझ में आएगा, हाँ परिवार ही दुखी है, ठीक है। तो जरूर सतयुग को डीटी वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क कहेंगे, डेविल वर्ल्ड कहेंगे, यह है शैतानों की दुनिया। तो पूछना है सतयुग स्वर्ग डीटी वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग शैतानी दुनिया के वासी हो। कहेंगे हम कलयुग में रहते हैं जी, ये कहेंगे। भल कितना भी धनवान हो परंतु वासी कहाँ के हो, अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में हैं वे पतित नर्कवासी हैं, फिर पावन बनना है, फिर पावन बनना है। तुम तब तो पुकारते हैं पतित पावन, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ये भी समझना है, ये भी समझना है, तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं, जो सिखलाता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, जो सिखलाता हूं, उस पर कोई विरला ही चलता है, विरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ, सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालो और उनको दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। कहेंगे तुम बन जाओ भाई, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो इस दुनिया का एंजॉय करने के लिए, जितने निकल जाओगे हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, कुछ तो जनसंख्या कम होगी, जल्दी जल्दी जाओ तुम स्वर्ग में। फिर उनको बताओ नहीं, हम आपको भी लेके जाएंगे, सबके साथ इकट्ठे जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, कोई अकेला नहीं जा सकेगा। मर गए कहने, फिर कहेंगे अब हमें भी मरना पड़ेगा, अब तो हमें भी आपके साथ चलना पड़ेगा। हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं, सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग। ये चक्र फिरता है ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, मतलब जो खाली बैठे हो ना, निकम में बैठे हो, उनको भी बाबा काम में जबरदस्ती लगाता है, रोज है ना इतना काम सौंप देता है कि कोई भी बचना चाहे तो अपने भाग्य को बिगाड़ना चाहे तो बच जाए, यदि वो अपना भाग्य बनाना चाहता है तो बच नहीं सकता। हाँ वो तो काम में लग जाए बस, हर एक की बुद्धि को छेड़ता रहे, जाके कुछ ना कुछ पूछो बात करो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, फिर से तुम सुख सुख धाम शांति धाम के मालिक बनते हो, सुख धाम में दुख का नाम भी नहीं। जब सुख धाम होता है तो दुख का नाम भी नहीं, अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़ने का मतलब है खाली पढ़ना नहीं, सारा धारणा भी करना, सारा कुछ, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे। अब पढ़ तो सारी मुरलियां ली पर तू धारणा कितनी की, पढ़ाई तो तब है ना, पढ़ाई का फायदा तो तब है, पास होके दिखाओ, फर्स्ट में आके दिखाओ, टॉप में आके दिखाओ, ये तो कॉमन बात है, ये तो कॉमन बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करना है, बहुत मीठा बाबा, बहुत मीठा बाबा है, उनकी डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है कि देह सहित देह के सभी बंधन खलास कर दो, आत्मा तो अविनाशी है, अभी अभी शरीर लिया अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी ही लगती है, इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं, जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई, रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम, जैसे नार का मिसाल है, ये नार क्या होता है आपने तो, हमने कुछ ने तो रेहट देखा होगा ना, एक रेहट होता था आजकल, हाँ आजकल वाले तो जो बाद में है, हाँ 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 ये उसको लेके आए नार रहट, वो एक घेरे पर घूमता रहता था, कंगने उस पर डब्बे लगे हुए होते थे, भरते नीचे से भर के आते थे, ऊपर आकर खाली कर देते थे। जो आजकल के बच्चे हैं वो तो इन बातों को नहीं जानते, जो पुराने हैं वो इसको देखा हुआ है। नार कुएं से पानी निकालने का एक तरीका है, ये भी बेहद का नार रहट है, तुम अभी भर रहे हो पानी, नीचे से भर के आ रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे और फिर धीरे धीरे खाली होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, खाली होंगे, उसके अंदर एक सुराख भी किया हुआ होता था, ध्यान दिया, जो नीचे से डब्बे होते थे हर डब्बे में सुराख भी होता था, क्यों निकलता रहता था, क्योंकि रहट सारा दिन तो चलेगा नहीं, जितनी देर चलेगा चलेगा उसके बाद खाली खड़ा रहेगा तो उसमें पानी भरा रहेगा तो वो जंग लगता रहेगा, क्योंकि वो लोहे के होते थे ना, तो हाँ तो उनका पानी निकल जाएगा तो उसको जंग नहीं लगेगा, इसलिए उसमें एक छोटा सा सुराख कर देते थे ताकि वो खाली हो जाए, क्योंकि आधे खड़े जो इधर से भर के आए हैं वो खड़े खड़े तो जंग में गल जाएंगे ना, इसलिए वो खाली हो जाते थे, तो भरते भरते पूरे भर जाएंगे और भर फिर धीरे धीरे खाली होंगे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खाली होंगे, मतलब जितने भी हैं जहां भी रुक गया रहे तो वहां खाली होना शुरू। तो इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है, मतलब ये नहीं कि हम एक्यूरेट वैसे होते हैं, ये केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए है, बैटरी से भी की जाती है, अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, बैटरी का मतलब बैटरी जब खाली हो जाए तो उसको चार्ज करो, फिर खाली हो जाए तो फिर चार्ज करो, तो इसी प्रकार से बैटरी से भी की जा सकती है, जो पुराने बैठे हैं उनको रहस्य से समझा सकता है, और आजकल के जो बच्चे हैं वो बैटरी से तुरंत समझ जाएंगे। 84 जन्म लेते हैं, आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नर्कवासी हैं, पीछे जो आएंगे वे नर्क में ही आएंगे, पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, ये बाप से भक्ति का फल मिलता है, समझा जाता है इसने बहुत भक्ति की है, तब ज्ञान भी लेते हैं। जिसने भक्ति ज्यादा की है वो ज्ञान भी ज्यादा लेगा, जिसने भक्ति कम की है वो ज्ञान भी उतना ही लेगा। सब राज तुमको बाप ने समझाया है, एक एक राज बाबा बैठकर हमें समझाते हैं, तुमको फिर दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं, क्या किए हैं, पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं, बाप जब आते हैं तब ही आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था, पाप आत्मा बनते ही गए हैं, पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं, फिर पाप आत्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, बाप को क्षमा भी कहते हैं, बाप को क्षमा भी कहते हैं, उनमें लाइट भी है और माइट भी है। लाइट में आते हो अर्थात जागते हो तो माइट आ जाती है, तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है, तुमको वहां काल खा ना सके, तुमको वहां काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं। जैसे एक खेल हो जाता है, सर्प का मिसाल है, तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाया है, ये बुद्धि में बैठ गया है, ये बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये सिर्फ बच्चे ही नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो, ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो, एक जन्म। ब्राह्मण धर्म में कितने जन्म, एक जन्म, कोई दो तीन जन्म भी लेते हैं। लाइन समझ में आई है,
कोई दो तीन जन्म भी
लेते, ब्राह्मण धर्म में कोई एक जन्म, कोई दो तीन जन्म भी लेते हैं। जैसे कोई ज्ञान में चला, दो चार साल में शरीर छूट गया, तो फिर जाके जन्म लेगा ना, छोटे छोटे जन्म है तो दो तीन जन्म भी लेते हैं। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वो संस्कार ब्राह्मण पन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मण पन के होने कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। ब्राह्मण कुल की आत्माएं तो वृद्धि को पाती रहेंगी, ब्राह्मण कुल के संस्कार तो ले जाते हैं ना, कुछ हिसाब किताब है तो दो तीन जन्म भी ले सकते हैं, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से देवी कुल में जाएगी, शरीर की तो बात नहीं, आत्मा ने जाना है ना, आत्मा ने एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। तुम अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजा पिता ब्रह्मा की भी संतान हो, दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है, बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो, सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है, सिर्फ तुमने क्या किया है, बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपने आप से पूछो कि नंबर एक हमें खुशी कहाँ तक रहती है, हमें खुशी कहाँ तक रहती है। नंबर दो, सर्व गुण सतो प्रधान सर्व गुण संपन्न थे अब श्री मत पर फिर बनना है ये निश्चय कहाँ तक है। नंबर तीन, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं दिन रात सतो प्रधान पावन बनने की फिक्रात रहती है। नंबर दो है, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत सेवा करनी है बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है देह सहित जो भी बंधन है उन्हें बाप की याद से खलास कर देना है। वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। मालिकपन की स्मृति, मैं मालिक हूं, किसका मालिक हूं, बाबा परमात्मा की सारी जायदाद का मालिक हूं। इसके लिए अपने आप को बैठकर समझाना है, जब सर्व खजानों के मालिक बनेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिमान भी बन जाएंगे। सदा ये स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावन हार हूं। क्या कहा है बाबा ने, मैं आत्मा करावन हार हूं, और बाबा कहता मैं हूं करण करावन हार। समझना है, करण करावन हार, मैं करता हूं तुम्हें ज्ञान देता हूँ रास्ता बताता हूँ, ठीक है, मैं यही काम करता हूँ बस, बाकी सब कराता करवाता तुमसे हूँ। तो करवाने वाला होता है करावनहार और करने वाला होता है करणहार। तो बाबा कहते जैसे परमपिता परमात्मा करणहार इतना है कि रास्ता दिखाता है और करवाता है करावनहार है। तो अब तुमने भी अपने आप को समझना है, मैं आत्मा इस शरीर से करावनहार हूं, मैं अलग हूं, मैं नहीं करता हूं, इस शरीर से करवाता हूं। ये अपने आप को समझना है, मैं इस शरीर से करावनहार हूं, मैं मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान हूं। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहेंगे। मैं अलग हूं और मालिक, मैं आत्मा अलग हूं और मालिक हूं, इस स्मृति से मन मना भव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। स्लोगन है, ग्लानी व डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना, ग्लानी और डिस्टरबेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना, अपनी राजधानी को निश्चित करना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करें। अव्यक्त मास में बाबा ने हमें ये विशेष दिया है कि रोजाना अव्यक्त साइलेंस आशरीरी होकर साइलेंस में बैठकर डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है, उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।